समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं नेहा गोस्वामी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार नेहा, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा, वेयर वी ब्रिंग यू एन अमलगमेशन ऑफ न्यूज रिपोर्ट्स एंड न्यू कैप्सूल्स एंड ऑफ कोर्स इज द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा, तो देश की परिक्रमा पे तो निकलना लाजमी है, इज़न्ट इट नेहा? सो वी विल गो टू डिफरेंट कॉर्नर्स एंड सी विच इंटरेस्टिंग स्टोरीज आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैव फ्रॉम देयर। वी ऑल्सो विल बिगिन द शो विद अ वेरी स्पेशल सेगमेंट कॉल्ड डेटलाइन इंडिया, ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर, बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की, कहा उनकी वीरता ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया।
PM Modi lays foundation stone and dedicates multiple development projects worth around 26,000 crore rupees to the nation in Bikaner, Rajasthan.
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पुष्टि की भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम सीधी बातचीत से हुआ।
लीडिंग जापानीज थिंक टैंक्स एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर न्यू दिल्लीज फाइट अगेंस्ट टेररिज्म ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद इंडियाज मल्टी पार्टी डेलीगेशन इन टोक्यो।
मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और गुजरात में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की।
And in badminton, Kidambi Srikanth advances to the quarterfinals of Malaysia Masters in Kuala Lumpur. And as I had mentioned, Neha, that in our segment, we'll begin the show with our segment Dateline India. A very important and interesting topic, of course. We all know that our Prime Minister has gone to Bikaner and he actually inaugurated a lot of projects and a very prominent one that will transform the very heartbeat of our towns and cities will be the Amrit Bharat Station Scheme. And yes, that is the topic of today's Dateline India. We'll explore how this ambitious initiative is redefining the role of railway stations in India. So, if we see, Neha, that railways are a lifeline in our country, isn't it? We are going to be different, but if you go to the station, you think it's side by side, a parallel universe, a railway station, isn't it?
बिल्कुल सायरा, ये एक ऐसी परियोजना होगी जो हमारे कस्बों और शहरों की धड़कनों को बदल रही है, अमृत भारत स्टेशन योजना। हम पता लगाएंगे कि ये महत्वाकांक्षी पहल भारत में रेलवे स्टेशनों की भूमिका को कैसे फिर से नए स्वरूप के साथ परिभाषित कर रही है।
That's true. And in this series, Prime Minister Modi, he inaugurated 103 redeveloped Amrit stations across India today via video conferencing from Bikaner. He also flagged off a new weekly train between Bandra Terminus in Mumbai and Bikaner Station in Rajasthan.
बीकानेर के पलाना में आयोजित जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। पिछले 11 वर्षों में देश में मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए उठाए गए कदमों को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक सड़क और रेल अवसंरचना के निर्माण के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं।
विकास भी विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक है, यानी हर अमृत स्टेशन पर आपको भारत की हजारों साल पुरानी विरासत के दर्शन भी होंगे।
और जानकारी के लिए बात करते हैं राजस्थान के बीकानेर में मौजूद हमारे संवाददाता आनंद कुमार से। आनंद, प्रधानमंत्री के संबोधन में आज कौन कौन से प्रमुख बिंदु रहे?
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान की यह यात्रा कई मायने में महत्वपूर्ण रही, क्योंकि एक तरफ श्री मोदी ने विकसित भारत के संकल्प को तो संकल्प को तो दोहराया ही, साथ ही पाकिस्तान को कड़े शब्दों में संदेश दिया कि पाकिस्तान को हर आतंकवादी हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि यह भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत इस संकल्प से बिगा नहीं सकती। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमावर्ती क्षेत्र का यह उनका पहला दौरा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए यह साफ किया कि आतंक का फन कुचलने का यही नीति है, यही रीति है। उन्होंने कहा यही भारत है, यही नया भारत है। उन्होंने कहा कि यह शोध प्रतिशोध का खेल नहीं है बल्कि न्याय का नया स्वरूप है। इसके अलावा अपने संबोधन से पहले उन्होंने विभिन्न विकसित परियोजनाओं का उद्घाटन किया और देश को समर्पित किया। अपने श्री मोदी ने बीकानेर से 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के आधारशिला रखी और
उद्घाटन किया।
ये परियोजनाएं रेल, सड़क, बिजली, जल और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। जी
जी जी, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका आनंद।
नेहा, अगर देखा जाए कि अगर जब बात हो रही है अमृत भारत स्टेशन स्कीम की, तो अगर आप लाइक इफ यू गो टू दीज बिग सिटीज, यू नो, दिल्ली, मुंबई, इवन द कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स, सो द स्टेशंस आर क्वाइट गुड। बट अगर कहीं ना कहीं जाते हैं हम लोग छोटे शहरों में, सो प्रॉब्ली दिस स्कीम इज फॉर मोर रेलेवेंट टू देम, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद होना चाहिए थी, इजंट इट, एंड स्पेशली अ वेरी बेसिक थिंग दैट आई थिंक एवरी वन फील्स दैट you know, clean toilets, it's a necessity. So under this scheme, I've heard, you know, that there would be modern toilets which will be kept in very neat and clean conditions. So I think that's very important. What do you think?
जी बिल्कुल सायरा, मुझे लगता है कि इस स्कीम के अंतर्गत स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा, उसके अंतर्गत काफी साफ सफाई की ध्यान दी जाएगी, जो खास तौर पर छोटे स्टेशनों में हमें नहीं देखने मिल पाता है।
राइट राइट, एब्सोल्युटली। एंड नाउ वी हैव अनदर कॉरेस्पॉन्डेंट सकलेन हु इज जॉइनिंग अस फ्रॉम सहारनपुर। सकलेन, व्हाट आर द मोर अपडेट्स दैट यू आर हैविंग?
We were in Saharanpur railway station today. Saharanpur railway station is among 19 stations in Uttar Pradesh, including Bijnor, Govardhan, Govindpuri and Bareilly city, that were inaugurated by the Prime Minister Narendra Modi under the Amrit Bharat station scheme. If we talk about Saharanpur station, this newly revamped station has undergone extensive development at a cost of approximately 15 crore rupees. As part of the development, the station now features a grand and spacious porch along with the parking facilities at both entry gates. The upgraded station offers a range of enhanced amenities, including air-conditioned waiting halls, modern food courts, and improved unreserved ticketing system hall, and a one-station-one-product store to promote local goods. To ensure accessibility for all, ramps have been made for the convenience of senior citizens and Divyangjans. These developments will boost trade and employment opportunities, also enhance the passenger service,
right,
and provide smoother travel experience for the people of the region.
Right.
Saira, we also visited Bijnor station too. Bijnor now has a completely new station building. After the redevelopment, this station got wider platforms, AC waiting halls with smart TVs, automatic ticket vending machines, clean and beautiful platforms, enhanced seating capacity of the platform, and elevators for the footover bridge. We also talked to some passengers at the station, and they were also happy for this redevelopment. Right. They said these facilities will improve their travel experience. Saira.
Right. Thank you so much, Saklan, for those updates. And I'm sure that all of us are looking forward to the redevelopment that will happen under the scheme. And we all know, Neha, that railway stations, they have been central to our lives, but many have remained largely unchanged for years. The Amrit Bharat Station Scheme aims to change that. But what exactly is the core vision behind this project? Let's tell our listeners.
सायरा, अगर हम इस योजना के उद्देश्य के बारे में बात करें, तो इसमें सबसे पहले चरणबद्ध और टिकाऊ तरीके से पूरे भारत में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना है। यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि यह लाखों यात्रियों के लिए स्वच्छ, अधिक आरामदायक और बेहतर स्टेशन बनाने के बारे में है।
That's right, and the Amrit Bharat Station Scheme is about transforming our railway stations into modern, multi-modal transportation hubs. The government wants to provide passengers with a seamless and enjoyable travel experience while also promoting local culture and economic growth. So, what are some of the key improvements that passengers can expect to see under this scheme?
जी बिल्कुल, आपका सवाल एकदम सही है। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के भवनों का नवीनीकरण किया जा रहा है। शहर के दोनों ओर के हिस्सों को रेलवे स्टेशन के जरिए जोड़ा जा रहा है और स्टेशनों को बसों व मेट्रो जैसे अन्य परिवहन साधनों से बेहतर तरीके से जोड़ा जा रहा है ताकि यात्रियों को कम से कम दूरी तय करनी पड़े। और हाँ, मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूंगी कि रेलवे कैसे दिव्यांगों की मदद कर रहा है और यही बात मुझे इसके बारे में और भी ज्यादा आकर्षित कर रही है।
Right, it's called the Sugamya Bharat Mission, which is also known as the Accessible India Campaign. It's all about making public spaces friendlier and easier to use for everyone, especially for differently abled persons. Think of it like this. When you enter a building, wouldn't it be great if there was a proper ramp at the entrance, accessible parking nearby, and even a help desk at a comfortable height? That's exactly what this mission ensures.
बिल्कुल सही, यह बात है साफ सुथरी उपयोगी शौचालयों की, ऐसे पीने के पानी के स्टॉल्स की जो आसानी से सभी की पहुंच में हो, और टिकट काउंटर्स की भी जो वाकई दूर ना लगे। यहां तक कि फुट ओवर ब्रिज और सबवे को भी फिर से डिजाइन किया जा रहा है ताकि वहां लिफ्ट या रैंप लगाया जा सके और किसी को सीढ़ियों से जूझना ना पड़े। दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल साइन, स्पष्ट प्रतीक और स्पर्श योग्य मार्ग बनाए जा रहे हैं ताकि वे सुरक्षित दिशा पा सके। संक्षेप में कहें तो सुगम्य भारत का लक्ष्य है रोजमर्रा की जगहों को सबके लिए सुलभ बनाना, क्योंकि असली समावेशिता तो इसी में है ना, जिसमें कोई भी पीछे ना छूटे।
That's right, and well, with this scheme, modernizing railway stations and integrating them with other modes of transport is crucial for creating more sustainable and livable cities. Well, that's all for today's edition of Dateline India. With this now, let's move on to our next segment. एंड यस, हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट होता है नेहा, जाहिर सी बात है हम लोग देश की परिक्रमा पे निकलते हैं, तो इस सफर में सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं कटक। वेल, चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी हैज रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ द पीएम जनमन योजना, अ की वेलफेयर इनिशिएटिव फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज, ड्यूरिंग अ हाई लेवल मीटिंग। द स्कीम विच टारगेट्स डेवलपमेंट इन रिमोट ट्राइबल एरियाज इज करंटली बींग इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा। लेट्स हियर मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
The Chief Minister has directed all senior secretaries to conduct field visits to remote areas to assess on-ground implementation. He also instructed district collectors and local departmental officers to visit each identified village and habitation, evaluate conditions and submit comprehensive reports. The PM Janman Yojana in Odisha covers 55 blocks, 1,751 villages and habitations, 289 gram panchayats and 2 municipal areas. The scheme is benefiting approximately 68,605 families, impacting over 3,14,000 people. Focused on improving the lives of tribal and particularly vulnerable tribal group PVTG communities, the initiative emphasizes access to healthcare, water supply, electricity and connectivity. One of the major successes under the scheme is the provision of mobile medical units to all 1,055 habitations that lacked a community health center within a 5-kilometer radius, achieving 100% coverage. Special emphasis was placed on expediting basic infrastructure in PVTG areas. The Chief Secretary, along with other top officials, has been tasked with visiting inaccessible locations to ensure timely completion of all projects. The Chief Minister reiterated the importance of adhering to the stipulated timeline, emphasizing that the success of PM Janman Yojana is pivotal to bridging development gaps in the state's most underserved regions. For Parikrama, with इतिश्री सिंह राठौर, दिस इज मालय रंजन मिश्रा, आकाशवाणी समाचार कटक।
मध्य प्रदेश में इस रबी विपणन वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड मात्रा में गेहूं की खरीदी की गई है। गेहूं के उपार्जन में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है।
मध्य प्रदेश में लगभग 9 लाख किसानों से इस साल 77,75,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि गत वर्ष 48,38,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हुआ था। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए है और राज्य सरकार द्वारा 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया गया है। इस तरह से गेहूं का उपार्जन 2,600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किया गया, जो कि देश में सर्वाधिक है। खास बात यह है कि 9 लाख किसानों में से 1,23,000 महिला किसानों द्वारा 8,98,000 मीट्रिक टन गेहूं का विक्रय किया गया। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 3,623 केंद्र खोले गए, जिसमें से 293 केंद्र महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित किए गए। इससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला। महिला किसानों के खाते में 2,335 करोड़ रुपए का बोनस सहित भुगतान किया जा चुका है। वहीं सभी किसानों के खातों में कुल मिलाकर 19,322 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इसके अलावा बिचौलियों और व्यापारियों द्वारा समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त करके किसानों का हक मारने के प्रयासों को रोकने के लिए इस वर्ष बायोमेट्रिक और ओटीपी आधारित किसान पंजीयन की व्यवस्था भी की गई। किसानों द्वारा विक्रय उपज के समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान भी सीधे उनके आधार लिंक बैंक खातों में किया गया। परिक्रमा के लिए भोपाल से मैं संजीव शर्मा।
अब चलते हैं खेल के मैदान में।
उससे पहले हमारे पास लेह की भी संवाददाता है, एंड यस, उसके बाद हम लोग खेल के मैदान में चलेंगे नेहा, एंड वील एंड आवर जर्नी ऑफ परिक्रमा अप देयर इन नॉर्थ इन लेह, वेयर द एनुअल 5-डे लद्दाख मोहल्लाम चेनमो, विच वाज अ मास प्रेयर फेस्टिवल ऑफ द सांग कम्युनिटी फॉर वर्ल्ड पीस एंड हैप्पीनेस कंक्लूडेड टुडे। The Ladakh Monlam Chenmo is a large-scale prayer festival which is being organized every year since the year 1991, and Buddhist monks and nuns from all over Ladakh gather at the Dharma Center in Leh for prayers for the well-being of the world. Our Leh correspondent Yang Chan Dolma has filed this report.
Ladakh Monlam Chenmo is an important annual event of Sangha community and socio-cultural celebration in Ladakh, and this festival is organized to promote peace, harmony and well-being in the society. This mass prayer is being organized by the All Ladakh Gonpa Association and is attended from all the four major sects of Tibetan Buddhism, namely Kagyu, Gelug, Sakya, Nyingma tradition of monks and nuns from various monasteries. According to President of All Ladakh Gonpa Association, Venerable Sri Angdus, this year 1,500 participants of monks and nuns have attended the mass prayer. Ladakh Monlam Chenmo is also used as a platform to discuss activities for the growth and progress of the monasteries of Ladakh and the Sangha community. Yangchen Dolma for Parikrama from Leh Ladakh.
आइए अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत और ध्रुव कपिला और तनिषा कैस्ट्रो की जोड़ी कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के अन्य प्री क्वार्टर फाइनल में आयुष शेट्टी फ्रांस के टोमा पोपोव से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए।
And it's time for business news. The benchmark domestic equity indices today slipped into negative territory, weighed down by weak global cues. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, dropped 645 points or 0.79% to close at 80,952. The National Stock Exchange Nifty 50 dipped 204 points or 0.82% to settle at 24,610.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। इसी कड़ी में आइए चलते हैं आजादी के सफर पर।
भाई लाल दाजी भाई पटेल, who was a resident of Patej, district Kheda, Gujarat. He actively participated in the Dharsana Salt Satyagraha 25 miles south of Dandi in May 1930. Gandhiji decided on a raid of the Dharsana Salt Works. He wrote to the Viceroy, Lord Irvine, and warned him about his plan. In order to prevent this, Gandhiji was arrested on the 4th of May 1930 and detained without trial near Pune.
But the Dharsana Satyagraha went ahead as planned by Gandhiji with Abbas Tayyabji, a 76-year-old retired judge, leading the march with Kasturba Gandhi at his side. Both were arrested before reaching Dharsana and sentenced to 3 months imprisonment. Even after their arrests, the Satyagrahis, of whom one was Bhai Lal Daji Bhai Patel, continued to march under the leadership of Sarojini Naidu, who warned them,
"You must not use any violence under any circumstance. You will be beaten, but you must not resist. You must not even raise a hand to ward off blows."
As apprehended, the armed forces began clubbing the Satyagrahis with steel-tipped lathis in an incident on the 22nd of May 1930. Bhai Lal, Daji Bhai Patel, suffered severe lathi blows and kicks and expired on the spot within half an hour. We salute the great nationalist.
And if we remember some more personalities, today we are also remembering a very, very important personality, a great reformer, Raja Ram Mohan Roy. Yes, it's his birth anniversary today. One of the founders of the Brahmo Sabha in 1828, which was the precursor of Brahmo Samaj, which was a social religious reform movement in India and in fact the Indian subcontinent, we can say. Raja Ram Mohan Roy has been dubbed as the father of Indian Renaissance. He was given the title of Raja by Mughal Emperor Akbar, and his influence was apparent in fields of politics, public administration, education and religion. He was known for his efforts to abolish the practices of sati and child marriage. He wrote Gaudiya Vyakaran, which was the first complete Bangla grammar written book. And if we talk about his early life, born in Radhanagar in the Bengal Presidency, his great-grandfather, Krishnakant Bandyopadhyay, was a noble Brahmin. And among the Kulin Brahmins, the descendants of the five families of Brahmins imported from Kannauj by Balal Sen in the 12th century, as per a popular myth, that those from the Rahari district of West Bengal were notorious in the 19th century for living off dowries by marrying several women. So, बहुत सारे कहते हैं ना जब समाज में नेहा चरम पे पहुंच जाती हैं कुरीतियां तब शायद कोई एक ऐसी शख्सियत हालात ही में भी पैदा करवा देते हैं और वो बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो ऐसी शख्सियत उनके दौर में आती हैं. And in fact, Raja Ram Mohan Roy was that one person. It is often said that when he saw the practice of sati, especially for his own sister, that changed his mindset.
Raja Ram Mohan Roy ko Bharatiya Punarjagran ka agradoot aur aadhunik Bharat ka janak bhi kaha jata hai. Bharatiya samajik aur dharmik punarjagran ke kshetra mein unka vishisht sthan mana jata hai. Unhone Bharatiya swatantrata sangram aur patrakarita ke kushal sanyog se dono kshetron ko gati pradan ki. Unke andolanon ne jahan patrakarita ko chamak di, wahi unki patrakarita ne andolanon ko sahi disha dikhane ka karya kiya. 15 वर्ष की आयु तक उन्हें बंगाली, संस्कृत, अरबी तथा फारसी का ज्ञान हो गया था. किशोरावस्था में ही उन्होंने काफी भ्रमण किया. उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जैसा कि आपने बताया, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा तथा आदि का भरपूर विरोध किया. आधुनिक भारत के निर्माता, सबसे बड़े सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के संस्थापक ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय सती प्रणाली जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
Yes, that's right, Neha. Aur us zamane mein, we all know that child marriage was prevalent. So that's why, and you know, very, very young girls, in fact, jinko aaj ke daur pe hum log bachiyan bhi kehna galat nahi hoga, bachiyan hi hoti thi jab unki shaadi kar di jati thi, to men who were, you know, almost as old as their father sometimes. And during his childhood, unhone apni bhabhi ko, not sister, sister-in-law ko dekha tha, sati hote hue. And you won't believe that girl, that woman was just a 17-year-old girl. और उनको जब उन्होंने देखा दैट शी वॉज ड्रैग्ड टुवर्ड्स द चिता टुवर्ड्स द पायर एंड ही विटनेस्ड दिस टेरिफाइंग इंसिडेंट एंड ही ट्राइड टू प्रोटेस्ट बट ऑब्वियसली क्योंकि वो प्रथा रही थी शी वॉज बर्न्ड अलाइव द पीपल वर चांटिंग महासती 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 बट ऑब्वियसली कोई भी औरत अपनी मर्जी से कोई भी नहीं आप फर्ज कीजिए एक उंगली होती है आपकी वो जल जाती है आपकी किचन में तो क्या हाल होता है ना कि कोई आपको जिंदा जला दे एंड उसको ग्लोरीफाई करे. आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी सैड टाइम्स बट थैंकफुली राजा राम मोहन रॉय को इतना झिंझोड़ दिया उस एक इंसिडेंट ने दैट ही प्रॉब्ली टुक अपॉन हिमसेल्फ टू जस्ट डू अवे विद दिस ट्रेडिशन एंड थैंकफुली दिस वॉज एबोलिश्ड बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय.
बिल्कुल सायरा, जिस समय लड़कियों को महिलाओं को खुद भी नहीं पता था कि उनके साथ इतनी गलत चीज हो रही है उस वक्त राजा राम मोहन का एक पुरुष होकर ये चीज उनको रियलाइज करना और उसके खिलाफ आवाज उठाना काफी उल्लेखनीय कदम था ये.
That's right. In fact, that's why I always have a lot of discussions with people. I say that feminism is not a domain of the females, you know. The feminism is a concept. It's an ideology that you believe in. Many men believe in that. There are so many patriarchal women in the society. Yes, and if you are male bashing, then you are feminist. And that's entirely wrong notions of feminism, I believe. Because Raja Ram Mohan Roy se bada kaun feminist agar raha dekha jaye us daur ka aur aaj tak unko remember kiya jata hai. And aaj bhi bahut si girls hain, they feel that, you know, they are trapped into this whole patriarchal notions because they receive patriarchy at the hands of women in their house. Jo aurte unko batati hain ki tumhara ye farz hai karna, tumhara ye defined role hai, you know. So that is patriarchy. So please, dear listeners, do away with these notions that you have to be a male basher in order to be a feminist. That's entirely wrong. So that was our tribute to Raja Ram Mohan Roy. We are also remembering Vetturi Sundaramamurthy today, known mononymously by his surname Vetturi, an Indian poet and lyricist who is known for his works in Telugu literature and cinema. He was a recipient of the National Film Award, various Nandi Awards, Filmfare Awards and other state honours. His career in Telugu cinema spanned more than four decades.
जी सायरा, सुंदरा मूर्ति एक भारतीय कवि और गीतकार थे जो तेलुगु साहित्य और सिनेमा में अपने कामों के लिए जाने जाते थे। तेलुगु सिनेमा में उनका करियर चार दशकों से अधिक समय तक चला। वेटुरी अपनी शिक्षा के बाद 1952 में पत्रकार के रूप में आंध्र प्रभा में शामिल हो गए। उन्होंने आंध्र प्रभा में अपने वरिष्ठ नरला वेंकटेश्वर राम से समाचार लेख संपादित करने की मूल बातें सीखी, जिन्हें वे अपना पहला शिक्षक भी मानते थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आधिकारिक दैनिक समाचार पत्र, जिसे आंध्र जनता कहा जाता है, उसके लिए भी काम किया। 1962 में वे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साक्षात्कार लेने वाले पहले और एकमात्र तेलुगु पत्रकार बने। वेटुरी को साहित्य और फिल्मों में उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पुरस्कार मिले। आइए सुनते हैं वेटुरी की मशहूर गीत। ये
माए दाता विष्णु माए ఒక చిన్న పిల్లాడి గాథ పొడి చేరనే లేని బాధ పెడదారిలో పడ్డ యాత్ర తెలుసా తను కాదు పొమ్మన్న తండ్రి తన కడుపు రాయైన తల్లి పసివాడి కన్నీటి పాత్రలు సా చిరుగొడుగైన లేని తలపై చిచ్చు పిడుగొచ్చి పడ్డ వేళ ఈ బ్రతుకింక దైవలీల మనస
And we are also remembering Sher Shah Suri today, a very, very, you can say, maverick ruler of his times. Jinhone bahut sare administrative reforms kiye. He was the ruler from of Bihar from 1530 to 1540 and Sultan of Hindustan from 1540 until his death in 1545. And he defeated the Mughals, founding the Suri Empire and establishing his rule in Delhi. The influence of his innovations and reforms extended far beyond his brief reign, being recognized as one of the greatest administrative rulers in India. During his time in power, he remained undefeated in battle and is renowned as one of the most skillful Afghan generals in history. And by the end of his reign, his empire covered nearly all of northern India. And however, due to family intrigues, he eventually relinquished his position over the Jagirs and he then moved to Agra, where he stayed until his father's death.
आज वंदना श्रीनिवासन का जन्मदिन है। वंदना श्रीनिवासन एक भारतीय पार्श्व गायिका हैं, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग के लिए काम करती हैं, खासकर तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में। वह एक स्वतंत्र गायिका और हिंदू, उर्दू, बांग्ला, मलयालम, तमिल और अन्य भारतीय भाषाओं में गजल, सूफी, भक्ति और अर्धशास्त्रीय कलाकार भी हैं।
तरसे नैना मोरे तरसे नैना मोरे तरसे नैना मोरे तरसे नैना मोरे तेरी राहत के
ये
वहीं आज नोवाक जोकोविच का जन्मदिन है। नोवाक जोकोविच सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी हैं, जो खेल के इतिहास में सबसे मशहूर खिलाड़ियों में से एक हैं। उनके 24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब, जिसमें अभूतपूर्व 10 ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियनशिप शामिल है, पुरुष वर्ग के लिए एक रिकॉर्ड है। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए नेहा गोस्वामी और सायरा मुश्तबा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने का।
नमस्कार।
नमस्कार।